ಹೃಷ್ಟಾ ಸುದೃಪ್ತಶ್ಚ ಕಂದರ್ಪಾಕೃಷ್ಟ ಮಾನಸಃ ನವ್ಯಚಷ್ಟವರಾರೋಹಾಂ ಗೃಹಿಣಿಂ ಗೃಹಮೇಧಿನಿಂ ತಪ್ತೋ ಹೃಷ್ಟಾ ಸುದೃಪ್ತಶ್ಚ ಕಂದರ್ಪಾಕೃಷ್ಟ ಮಾನಸಃ ನವ್ಯಚಷ್ಟವರಾರೋಹಾಂ ಗೃಹಿಣಿಂ ಗೃಹಮೇಧಿನಿಂ ತಪ್ತೋರಿಷ್ಟಾಸು ದೃಪ್ತಶ್ಚ ಕಂದರ್ಪಾ ಮಾನಸಃ ಆರೋಹಂ ತೃಪ್ತೋರಿಷ್ಟಾಸು ದೃಪ್ತಶ್ಚ ಕಂದರ್ಪಾ ಕೃಷ್ಟ ಮಾನಸಃ ನವ್ಯಚಷ್ಟವರಾರೋಹಾಂ ಗೃಹಿಣಿಂ ಗೃಹಮೇಧಿನಿಂ ತೃಪ್ತೋರಿಷ್ಟಾಸುದೃಪ್ತಶ್ಚ ಕಂದರ್ಪಕೃಷ್ಟಮಾನಸಃ ನವ್ಯಚಷ್ಟವರಾರೋಹಾಂ ಗೃಹಿಣಿಂ ಗೃಹಮೇಧಿನಿಂ ತೃಪ್ತೋರಿಷ್ಟಾತೃದೃಪ್ತಶ್ಚ ಕಂದರ್ಪಾಕೃಷ್ಟಮಾನಸಃ ನವ್ಯಚಷ್ಟವರಾರೋಹಾಂ ಗೃಹಿಣಿಂ ಗೃಹಮೇಧಿನಿಂ ತೃಪ್ತೋರಿಷ್ಟಾಸುದೃಪ್ತಶ್ಚ ಕಂದರ್ಪಾಕೃಷ್ಟ ಮಾನಸಃ ನವ್ಯಚಷ್ಟವರಾರೋಹಾಂ ಗೃಹಿಣಿಂ ಗೃಹಮೇದಿನಿಂ ತೃಪ್ತಃ ತುಷ್ಟ ಹೃಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನ ಸುದೃಪ್ತಃ ಅತ್ಯಂತ ಗರ್ವಿತ್ ಚ ಭೀ ಕಂದರ್ಪ ಕಾಮದೇವ್ಸಿ ಆಕೃಷ್ಟ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಮಾನಸಃ ಉನ್ಕಾ ಮನ್ ಉಸ್ಕಾ ಮನ್ ನಹಿ ವ್ಯಚಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯ ವರ ಆರೋಹಂ ಉಚ್ಚತರ ಚೇತನ ಗೃಹಿಣಿಂ ಪತ್ನಿಕೋ ಗೃಹಮೇಧಿನಿಂ ಜೊ ಅಪ್ನೆ ಪತಿ ಕೋ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ್ ಮೇ ರಖತಿ ಹೇ ಅನುವಾದ ತಥಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರ ಶಿಲಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇ ಭೋಜನ ಕರ್ ಲೇನೆ ತಥಾ ಅಪನಿ ಭೂಖ ಔರ್ ಪ್ಯಾಸ ಬುಝಾ ಲೇನೆ ಕೇ ಬಾದ ಪುರಂಜನ್ ಕೋ ಮನ್ ಮೇ ಕುಛ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲತಾ ಹುಯಿ ವಹ ಉಚ್ಚತರ ಚೇತನಾ ತಕ್ ನ ಪಹುಂಚ ಕರ್ ಕಾಮದೇವ್ ದ್ವಾರಾ ಮೋಹಿತ ಹೋ ಗಯಾ ಔರ್ ಉಸೆ ಅಪನಿ ಪತ್ನಿ ಕೋ ಢೂಂಢನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ಹುಯಿ ಜಿಸ್ನೆ ಉಸೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ್ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಕರ್ ರಖಾ ಥಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಯಹ ಶ್ಲೋಕ ಉನ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೈ ಜೊ ಅಪನೆ ಕೋ ಕೃಷ್ಣ ಚೇತನಾ ತಕ್ ಊಪರ್ ಉಠಾನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ ಜಬ್ ಕೋಯಿ ಭಕ್ತ ಗುರು ಸೇ ದೀಕ್ಷಾ ಲೇತಾ ಹೈ ತೋ ವಹ ಅಪನಿ ಆದತೆ ಬದಲ್ ದೇತಾ ಹೈ ಔರ್ ಮಾಸ್ ಖಾನಾ ಅವೈಧ ಮೈಥುನ್ ಕರ್ನಾ ಜುವಾ ಖೇಲ್ನಾ ತಥಾ ಶರಾಬ್ ಪೀನಾ ಛೋಡ್ ದೇತಾ ಹೈ ಶಾಸ್ತ್ರೋ ಮೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಕೆ ಅಂತರ್ಗತ ಗೇಹೂ ಚಾವಲ್ ತರಕಾರಿ ಫಲ ದೂಧ ಚೀನಿ ತಥಾ ದೂಧ ಕಿ ವಸ್ತುವೆ ಬನಾಯಿ ಗಯಿ ಹೈ ಬತಾಯಿ ಗಯಿ ಹೈ ಚಾವಲ್ ದಾಲ್ ರೋಟಿ ತರಕಾರಿ ದೂಧ ತಥಾ ಚೀನಿ ಜೈಸೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂತುಲಿತ ಹೋತೆ ಹೈ ಕಿಂತು ಕಭಿ ಕಭಿ ಯಹ ದೇಖಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪುರುಷ ಪ್ರಸಾದ ಕೆ ನಾಮ ಪರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಾಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಭೋಜನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಅಪನೆ ಪೂರ್ವ ಪಾಪಮಯ ಜೀವನ್ ಕೆ ಕಾರಣ ವಹ ಕಾಮದೇವ್ ದ್ವಾರಾ ಆಕೃಷ್ಟ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಖೂಬ್ ಡಟ್ ಕರ್ ಅಚ್ಛಾ ಭೋಜನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಯಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೇಖಾ ಗಯಾ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ನವ ದೀಕ್ಷಿತ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಅಧಿಕ ಭೋಜನ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕಾ ಪತನ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ವಹ ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಚೇತನಾ ಭಕ್ತಿ ತಕ್ ನ ಉಟ್ ಕರ್ ಕಾಮದೇವ್ ದ್ವಾರಾ ಆಕೃಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ತಥಾ ಕಥಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ स्त्री के द्वारा विचलित हो जाता है और वानप्रस्थ पुनः अपनी पत्नी से संभोग करने के लिए आकृष्ट होता है, अथवा वह किसी नई पत्नी की तलाश करने लगता है। हो सकता है कि भावनावश वह अपनी पत्नी छोड़कर भक्तों एवं गुरु की संगति में चला जाए, किंतु अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण वह वहां ठहर नहीं पाता। वह कामदेव द्वारा आकृष्ट होने से कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के बजाय नीचे गिर जाता है और इंद्रिय सुख के लिए दूसरी पत्नी से ले आता है। नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में कृष्ण चेतना से भौतिक जीवन में नवदीक्षित भक्त के पतन का वर्णन किया है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन्नपक्वो अथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम् अबुदमनुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम् स्वधर्मतः। इसे सूचित होता है कि यद्यपि नवदीक्षित भक्त अपरिपक्वता के कारण कृष्ण भावनामृत से नीचे गिर सकता है, किंतु उसकी कृष्ण सेवा व्यर्थ नहीं जाती। किंतु जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में अथवा तथाकथित समाज एवं पारिवारिक कर्तव्यों में अड़िग रहता है और कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है उसे अत्यंत सावधान रहना चाहिए और वर्जित कार्यों से दूर रहना चाहिए, जिसका उल्लेख रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में किया है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर् भक्ति विनश्यति। नवदीक्षित भक्त को न तो ज्यादा खाना चाहिए और न ही आवश्यकता से अधिक संग्रह धन संग्रह करना चाहिए। अधिक खाना और अधिक धन संग्रह करना अत्याहार कहा जाता है। ऐसे अत्याहार के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है, यह प्रयास कहलाता है। हो सकता है कि ऊपर ऊपर से कोई अपने को विधि विधानों के प्रति अत्यंत निष्ठावान दिखाए, किंतु साथ ही भीतर भीतर उनके पालन करने में दृढ़ न रह सके, यह नियमाग्रह कहलाता है। अवांछित व्यक्तियों के साथ मिलने से अर्थात जनसंग से वह काम तथा लोभ से दूषित हो जाता है और भक्ति के पथ से नीचे गिर जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है उसको जितना मुझसे हो सके मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और एक्चुअली यहाँ भागवतम क्लास देना मतलब वो दूसरों के लिए नहीं होता, वो खुद के शुद्धिकरण के लिए होता है। ये मेरा अनुभव है कि जो भी हम दूसरों को पढ़ाते हैं भगवान वो परीक्षा हमारे लिए खड़ी कर देते हैं। दूसरों को बताना मतलब खुद की तैयारी करना। तो यहाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ ये खुद की तैयारी के लिए कर रहा हूँ, और इसमें अगर कुछ आपको लाभ हो जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो आज का जो विषय है ये पुरंजन व्याख्यान कहते हैं इसको, जहां नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को समझाना चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति का जो स्तर है यह कर्मकांड से कई गुना आगे है। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, परिवार को लेकर चलते हैं, बाल बच्चों को संभालते हैं, अपने माता पिता का ख्याल करते हैं मतलब उनकी आसक्ति होती है। इसलिए वरना आप देखिएगा कि कोई माता जो है वो अपने साइड वाले बच्चे को खाना नहीं खिलाती। साइड का बच्चा था ना कभी घर में ऐसा चल दिया था, तो माँ ने अगर रसगुल्ला बनाया होगा तो अपने खाओ चुप अपने बच्चों को खिलाती है। साइड वाले को जल्दी उतना प्यार वो नहीं कर सकती क्योंकि उसका आसक्ति अपने बेटे पे है। अहम ममेति जनस्य मोहोयम अहम ममेति, क्योंकि ये मेरा है। लोग चिल्लाते हैं भारत माता की जय, क्योंकि हम कहां पैदा हुए, भारत में पैदा हुए। अगर हम गलती से पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो इनकलाब जिंदाबाद अल्लाह अकबर चिल्ला के हम उस साइड का प्रेम दिखाते। तो ये तो देहात्म बुद्धि है कि कोई भारत से प्रेम करता है, कोई पाकिस्तान से प्रेम करता है, कोई चाइना से प्रेम करता है। जैसे भारत का कुत्ता है वो भारत से थोड़ी प्रेम करता है, उसको मालूम ही नहीं है भारत क्या है, वो तो आपकी संकल्पना है। तो वैसे गृहस्थ जीवन में आसक्ति में और डूब जाता है आदमी, तो डर के मारे भगवान पे पूरा विश्वास नहीं होने के कारण वेदों में वर्णित जो कर्मकांड सेक्शन, मतलब कर्मकांड का जो भाग है जहां पे पुत्र प्राप्त कैसे हो, बेटी प्राप्त कैसे हो, आपको धन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको बंगला चाहिए, गाड़ी ऐश्वर्य चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए कुछ ना कुछ विधि विधान लिए गए हैं। तो सामान्यतः 90% जो लोग हैं वो इसी में लग जाते हैं। उसी प्रकार प्राचीन बरी भी उसमें लग गए। तो नारद मुनि ने देखा कि उनके जो पुत्र हैं उनका तो मार्गदर्शन करके उनको मुक्ति का मार्ग भगवान शिवजी भी दिखा दिए, भगवान की स्तुति करके, भगवान विष्णु की स्तुति करके भगवान शिवजी ने भी उनको आशीर्वाद दिया। तो नारद मुनि सोचे कि अरे इनके पिताजी को क्यों छोड़ा जाए। हम कहते हैं ना कि अगर हम लोग ड्यूटी बन जाएंगे तो हमारे माता पिता भी ड्यूटी बन जाते हैं। कई बार माता पिता पहले ड्यूटी बन जाते हैं, धीरे धीरे बेटा छोड़ने आता है मंदिर में, एक बार दो बार नहीं जाऊंगा मंदिर में, नहीं पैसा खाते आपके मंदिर वाले, ऐसे कुछ बोल बोल के मंदिर में नहीं आता, और धीरे धीरे बाद में खुद ही माँ कहाँ है माँ कहाँ है देखने आता है, कोई चरणामृत दे देता है और अचानक पता नहीं इसको क्या होता है, दूसरे दिन से बीड़ बैग लेके घूमना चालू कर देता है, सोलह माला लेता है, दीक्षित हो जाता है। तो यह भक्ति की शक्ति है। तो नारद मुनि सोचे कि अगर ये प्राचीन बरी को मैं सीधा लेक्चर दे दूंगा, फिलोसफी दे दूंगा, तो इनको समझ में आने वाला नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि जो धनी लोग हैं वो लोग सीधा मंदिर में तो आएंगे, दूर से देख के चले जाएंगे, तो उनको कैसे जोड़ना है, तो बोले उनको लाइफ मेंबर बना दो, उनको लगना चाहिए कि हमने हमारा धन मंदिर में दिया है, तो देखने आएंगे हाँ ईटा बालू कहां कहां लगा है, कहां का प्लास्टर ऑफ पेरिस किया है। उसी बहाने वो देखते देखते किसका दर्शन लेंगे, भगवान का दर्शन लेंगे। लेकिन हम लोग भगवान का दर्शन करने नहीं जाते, भगवान हमें हमारा हमको देख के शुद्ध करते हैं, वो भगवान का उनके ऊपर दर्शन गिरते ही वो शुद्ध हो जाते हैं और उनको भक्ति करने की अभिलाषा जाग जाती है। तो वैसे ही नारद मुनि ने बहुत चतुर प्रचारक हैं, उन्होंने क्या सोचा कि इनको स्टोरी के रूप में बताया जाए। तो आप लोग बहुत दिनों से कथा सुनी रहे हैं, असली में परीक्षा तो मेरी थी कि मैं कल पूरा दिन भर यही चार अध्याय पढ़ रहा था और मुझे लिखना पड़ा, इसका मतलब ये है, क्योंकि एक बार पढ़ लिया होता है लेकिन जब क्लास देना होता है तो और भी सोच समझ के पढ़ना पड़ता है, तो मेरा ही स्टडी हुआ कृपा से। तो चार अध्याय ऐसे हैं कि चारों अध्याय में कहानी के रूप में नारद मुनि ने समझाया और अंत में प्राचीन भरी समझे कि शुद्ध भक्ति का जो स्तर है जो आपने सिखाया है वो मेरे जो कर्मकांडी गुरु लोग हैं इनसे कई गुना आगे है और ये अंतिम है। कर्मकांड करके भी आदमी सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि जो गरीब है वो अमीर होना चाहता है, जो अमीर है वो अमीरों से भी अमीर होना चाहता है, जो और अमीर है उससे भी अमीर होना चाहता है, और जो सबसे अमीर है वो भगवान की तरह दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। ये सब असंभव है, इसलिए सभी दुखी हैं। तो ये संसार में सुख जो है वो पैसे से तो नहीं आता, पर ये समझने में समय लगता है, और जो ये समझ गया कि धन ऐश्वर्य सुंदर स्त्री न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तुकी तोई, हे भगवान कृपया करके न धन जन मुझे न सुंदरी दीजिए, ये सब टाइम पास है, मुझे क्या दीजिए, केवल आपकी भक्ति दीजिए, वहां से जो आनंद आएगा उससे मेरा जीवन व्यापन कर लूंगा। तो जैसे कहानी आगे जाती है तो सारा प्राचीन बरही एक पुरंजन की कथा बताते हैं, राजा पुरंजन की, जो एक नवद्वार के शहर में जाता है, वहां एक सुंदर स्त्री को देखता है जो एक पति खोज रही है। और आप देखिएगा तो पुरंजन भी इतना घूमने के बाद भी कुछ मिला नहीं पाया, उसमें 84 लाख का वर्णन है कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद भी व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष है वो सोचता है कि अरे मुझे कोई स्त्री मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए, लेकिन मिलने के बाद उसको पता चलता है कि जैसे हाथी देखा ना, इतना बड़ा हाथी होता है, उसको छोटा सा डंडा दिखा के कैसे उसको नचाते हैं, पांव ऊपर वो सर्कस में, यस पांव नीचे, वैसे उसको बाद में शादी के बाद नचाते मैं नहीं बोल रहा हूं तात्पर्य में। तो ऐसा मत समझे, यहां हम लोग सब जीवात्मा है, कोई आज पुरुष है कल स्त्री है, सबके लिए एग्जाम है, सत्य एक ही है। तो उसमें वैसे ही काम वासना जो लुलुप्त तो हो जाएगा तो इस संसार के बंधन में फंस जाएगा। तो वैसे ही पुरंजन इस संसार में स्त्री को मोहित होके, मतलब जो उसको स्त्री को बुद्धि का स्वरूप दिया गया है, जिसके सेवक थे उसके, नौकर चाकर जो थे वो कौन है, इंद्रिय हैं। ये बहुत एलोगोरिकल स्टोरी है तो ज्यादा नहीं जाके आज के तत्प्रेम हम आने का प्रयास करेंगे। और फिर वो धीरे धीरे उस स्त्री से प्रेम करता है, स्त्री को ग्लोरीफाई करता है कि तुम इतनी सुंदर हो, तुम तो ये है वो हो, और पुरंजन का शरीर सुदृढ़ होने के कारण प्रभात जी कहते हैं कि स्त्रियों को वो आकर्षित करता है। प्रभात जी एक जगह और लिखते हैं कि स्त्रियों का कान वीक होता है। क्या वीक होता है? कान। अगर वो किसी से अच्छा मधुर कीर्तन सुन ले या किसी का आवाज सुन ले या किसी का, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। और पुरुष का आंख वीक होता है, वो सुन लेगा तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन देख लेगा एक बार तो रात भर नींद नहीं आएगी। एक बार एक ऋषि थे, शायद गौतम ऋषि थे या कौन थे, सीनियर भक्त लोग बता सकते हैं, पर व्यासदेव जी जब वेदों की रचना किए तो कोई भी व्यक्ति अपने मन से कुछ नहीं करता, वो हमेशा गुरु साधु शास्त्र के प्रमाण में रहते हैं। तो व्यासदेव जी स्वयं जब वेदों की रचना किए तो जाके ऋषियों को दिए कि आप लोग बताइए कुछ इसमें चेंजेस हो, क्योंकि जन सामान्य इसी से लेके अपना जीवन व्यापन करेगा, तो आप लोग इसमें कुछ त्रुटि होगा तो बताइए। तो शायद गौतम ऋषि थे, तो उन्होंने देखा, बोला ये क्या है व्यासदेव जी, जहां जहां देखिए काम वासना काम वासना काम वासना काम वासना, ययाति काम वासना, पुरंजन काम वासना, पुरुरावा काम वासना, ये काम वासना, उर्वशी काम वासना। अरे कुछ कुछ अलग भी लिखिए, कुछ इस दुनिया का मिठास भी लिखिए। जैसे कवि लोग लिखते हैं ना, वो झरना बह रहा था और नदी में ये कमल खिल रहे, वैसा कुछ लिखिए। तो व्यास जी कुछ नहीं बोले, ये कथा पहले भी किसी ने बताई होगी, लेकिन तो वो बोले, तो व्यासदेव जी कुछ नहीं बोले क्योंकि व्यासदेव जी काम वासना का खंडन किए। तो धीरे धीरे उसी दिन क्या हुआ, शाम में गौतम ऋषि अपने आश्रम में गए और उनके शिष्यगण भी थे। उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उस दिन, जो आश्रम का आश्रम मतलब ऐसे पिलर्स तो नहीं थे, वो कॉटेज जैसे थे, तो उनका सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे था। सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पे होने के कारण वो वहां से एक औरत आई और बहुत बारिश गिर रहा था, एक सुंदर स्त्री आई और बारिश गिरने के कारण वो और भी मतलब अलग तरीके से देखा जाए तो वो और सुंदर दिख रही थी। तो वो आई और बारिश हो रहा था, उसको जाना था, तो वो बोली वो कि उधर जो ब्रह्मचारी लोग थे उनको बोले कि हमको बस एक रात रुकने दीजिए, बारिश खत्म हो जाएगा हम चले जाएंगे, नहीं तो भीग के हम ऐसी कूड़ कूड़ के हम मर जाएंगे। तो ब्रह्मचारी बोले कि ऐसा है, हमारे गुरुजी ने तो मना किया है, परंतु गुरुजी अगर परमिशन देते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हमारा सिक्योरिटी गार्ड का जो कमरा है वो खाली है। तो बोले हम गुरुजी से मिल लेते, हमको आश्रम दिखा दीजिए। दिखा दिया तो कुटीर में आवाज भी है, बोले कौन है? तो बोले गुरुजी हम ऐसे हैं, यात्री हैं, बारिश जोर जोर से हो रहा है, कृपा करिए कृपा करिए, आप जैसे भक्ति कृपा कर सकते हैं, बहुत दंडवती किया। तो बोले ठीक है, दरवाजा मैं दरवाजा थोड़ा खोलूंगा और चाबी दूंगा, वो सिक्योरिटी वाले रूम में सो जाना। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो जब चाबी दिए तो वो स्त्री ने हाथ ऐसा लगाया और उतने में वो थोड़ा दरवाजा खोला था, वो लाइटनिंग होता है ना, लाइटनिंग मतलब बीज कड़कता है, तो उसमें अंधेरे था लेकिन उसमें वो दिखने लगी, उसका सौंदर्य वो ऋषि ने देख लिया। तो बोले नहीं नहीं नहीं, बंद कर दिया, बंद कर दिया, और ये ऋषि गए, ये माता गई गई और अपने कुटीर में सो गई। और बोले सुनो, कोई भी दरवाजा खटखटाए बिल्कुल मत खोलना, सुबह सूर्योदय से पहले निकल जाना। वो बोली जी गुरुजी, निकल गई। और रात में क्या हुआ, सोते वक्त इन ऋषि को ही तकलीफ होने लगा, विवल विवल हो गए। भक्त लोग कृष्ण प्रेम में विवल होते हैं। हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता कहाँ है मेरे कृष्ण। तो वैसे ही वहां भक्ति नहीं करेंगे तो यहां विवल होना पड़ता है। हा? तो एकदम विवल हो गए, क्या रे वो ऐसा रूप है वो, मैं उसको एक बार मिल ही लूंगा, एक बार मैं आलिंगन दूंगा। तो उतने में वो रहा नहीं गया, उन्होंने दरवाजा खोला और सीधा गए। मतलब इसमें भी कहा गया है कि जब आदमी काम वासना से वो हो जाता है तो उसको कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं सूझता, इसलिए वर्णाश्रम है। फ्री मिक्सिंग का जो कल्चर है वो डेंजरस है। फ्री मिक्सिंग के वजह से आज जो भी समस्याएं हो रहे हैं, लोग शादी करते ही दसवें दिन डाइवोर्स ले लेते हैं। आई कॉन्ट लिव विथ यू, यू हो आई कॉन्ट, फिर वो उसमें वकील पैसा खाता है, सब पैसे खाते हैं। पहले ऐसे नहीं था, ज्यादा नकरे करते एक थप्पड़ मारा, बोले ठीक है। और फिर पत्नी को लगा कि पति गलत कर रहा है तो सीधा उसके भाई को फोन लगा दी थी, भाई लगा दे मेरे बहन को कुछ ठीक से व्यवहार नहीं किया, बोले नहीं नहीं ठीक है ठीक है। तो ये तरीका था वर्णाश्रम में। आजकल हो गया कोर्ट में जाओ, कोर्ट क्या बोलता है, डाइवोर्स करो। शादी.com बोले उनको तो क्लाइंट मिलता है, बोले कोई बात नहीं आप डाइवोर्स करिए, हम आपको नया ढूंढ के देते हैं। तो वर्णाश्रम का पूरा खंडन, इसलिए वर्णाश्रम है ताकि सब लोग अपने अपने जगह पे स्थित होकर भगवान का चिंतन कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां वो ऋषि गए पहुंचे, और जो ही पहुंचे तो दर्जा खटखटाया, तो बोले माता जी बोली कौन है, तो बोले मैं हूं। तो बोले जी बोलिए क्या आज्ञा, तो बोले मैं चली जाऊंगी, आप अभी चिंता मत करिए, मैं बस थोड़ा देर और बारिश रुक जाएगा फिर मैं चली जाऊंगी। नहीं दर्जा खोलो। बोले नहीं गुरुजी आपने ही बोला मैं नहीं खोलूंगी। बोले नहीं मैं बोल रहा हूं ना, ये मेरा मठ है, मैं बोल रहा हूं खोलो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो इतने व्याकुल हो गए कि ऊपर चढ़ के जो घूस फांस का वो रहता है ना, घास फूस का जो भी, वो फाड़ के उतर के नीचे गिरे। उन्होंने बोले कि आप क्या कर रहे हैं, बोले आलिंगन देते जोर से। जो ही आलिंगन दिया तो यहां उनको मुंह पे दाढ़ी दाढ़ी सा लगा। तो बोले ऊपर देख, बोले कौन है, स्वयं व्यासदेव। तो बोले अच्छा कुछ इसमें वेदों में बदल करना है, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। जितना लिखे वो लिखे ही है, मेरा भी ऐड कर दीजिए। तो ये नहीं है कि शास्त्र स्त्री को खंडन कर रहे हैं या पुरुष को खंडन कर रहे हैं, नहीं, शास्त्र बद्ध जीवात्मा को खंडन कर रहे हैं जो इस संसार में पुरंजन की तरह आके भोग में लगा हुआ है। वो चाहता है कि मुझे किस तरीके से भोग मिले और मैं किस तरीके से नोचूं। शंकराचार्य कहते हैं न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्यो न भरता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। वो कहते हैं कि संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, न तातो, माय डियर डैडी, फादर्स डे मनाते हो, फादर भी तुम्हारा नहीं है, जब तक तुम इस धरातल पे हो फादर है, फिर फादर चला जाएगा तुम चले जाओगे। न तातो न माता न बंधुर न दाता, जब आप मर रहे हो तो कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए मूर्ख जीवात्मा इसी सब बंधनों में फंसना ही चाहता है। तो भगवान बोलते हैं खेलो, जैसे बच्चे लोग वीडियो गेम खेलते हैं, देखा आपने, तो वीडियो गेम में होता है ना कि ये गाड़ी चूज कर लो, फिर बच्चे मैंने देखा है दो दो तीन तीन साल के बच्चे खेलते हैं, वो इतने लग जाते हैं कि उनको मार खाओ, माँ मुंह खोलते तब जाके थोड़ा खाते हैं, मम्मी मोबाइल दो पहले, आजकल खाते तो पहले मोबाइल चाहिए हाथ में। तो गेम में इतने फंस जाते हैं कि उनको बाहर का जीवन समझता नहीं। वैसे ही हम भी इस जीवन में ऐसे फंसे हैं कि हमें वो वाला जो मुक्त जीवन था वो हम भुला गए। तो उसको याद करना है तो साधना करना पड़ेगा, लेकिन आज के श्लोक में साधक की भी अवस्था को वर्णित किया गया है कि साधना करते करते भी कहीं पूर्व इच्छाएं हमको उड़ाना ले जाएं, जैसे प्लेन को हाईजैक करते हैं ना, एक ही आतंकवादी होता है, बंदूक रखता है, बोलता है पायलट को इधर घुमाओ, क्या करेगा, घुमाना पड़ेगा, क्योंकि मर जाएगा तो पैसेंजर भी मरेंगे, फिर पैसे भी फायदा नहीं, तो घुमा लेता है। वैसे ही माया देवी जीवात्मा को हाईजैक करती है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, सिक्योरिटी चेकअप पे ही सब चेकअप करा लेना चाहिए। तो हमको खुद अपने जीवन में साधक को हर मोमेंट में हर क्षण सतर्क रहना चाहिए। माया किसी भी रूप में आ सकती है, अहम रूप में आ सकती है, स्त्री रूप में आ सकती है, प्रतिष्ठा के रूप में आ सकती है, धन के रूप में आ सकती है। तो यहां पे स्पेशली स्त्री रूप का ज्यादा प्रभाव बताया गया है। यहां कहते हैं कि जैसे साधक नया जब आता है तो वो, अब देखिएगा नए भक्त आते हैं मंदिर में, उनको लगता है ओह ऐसे ये आसन को भी ओह सब कर लेंगे, जहां जहां यहां यहां सब लगा देंगे। कोई भी नया भक्त टीका लगा हुआ दिखा, भले वो मैनेजमेंट के लिए वो बदमाश है, उसको लगता है आहा हा प्रभु जी धन्य है, हम धन्य धन्य है, उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सांद्रानंद विशेषात्मा, पहले पहल उसका पाप छूट जाता है, तो पाप छूटने के कारण वो रिलैक्स फील करता है, जैसे आपके कंधे पे कोई बोझा दे दे और आपको बोले चलो, तो कोई उठा ले आपका सामान, बोले चलिए, तो फिर चल जाते हैं। वैसे हमारे पाप का जो बोझा है वो इतना है कि अंदर हम भक्ति में जब आते हैं तो हमें अचानक से पाप, भगवान हमारा पाप हर लेते हैं, पतित पावन है भगवान, हमारा पाप हर लेने के कारण हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप देखिएगा जब कोई कीर्तन में नाचने अंदर आता है ना, तो पहले पहले बड़ा हिचकिचाता है, और उसको जो ही कोई भक्त हाथ लगाता है ऐसे आइए, तो भक्त के हाथ लगाते ही देखना वो धीरे धीरे अंदर आने लगता है, अब फिर उसको हल्का लगने लगता है, हाथ ऊपर करता है हरि बोल। आप लोग देखे मंदिर में जब नाचते हैं नए लोग तो उनको अपनी पत्नी को पढ़ता है, पत्नी नहीं 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 छोड़िए कहीं सन्यासी ना बन जाए बाल काट देंगे, जो ही उसको अंदर हाथ, वैष्णव का हाथ लग जाए, मतलब वैष्णव मतलब भगवान की कृपा हो गई, अगर वैष्णव ने आपको सहारा दे दिया तो आप बच गए, खींच के प्यार से लाते हैं, आइए ऐसा टच करते, हाँ उसको लगता है हाँ, फिर सेल्फी मोबाइल खींचते खींचते हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधक नया आता है, खुश हो जाता है, अब फिर झोली माला में हाथ डालता है, हरे कृष्णा, वो इतना सीरियस हो जाता है एकदम दिल लगा के, और सीरियस हो गया तो कान में सब, और सीरियस हो जाता है, और सीरियस हो गया तो कोने में ऐसा दीवार को मुंह लगा के लेकिन माया बैठी है, कब तेरे बीड बैग से हाथ निकलेगा और मेरे पास जितने भी मॉडल्स हैं तेरे सामने मैं प्रस्तुत करूंगी और तब मैं देखूंगी तेरा माला, भजन करी साधन करी अंत समय जानबे, जो तुमने भजन साधन किया है या बीड बैग में हाथ डाल के देख रहे हो, अरे कृष्ण, कौन देख रहे हैं, भगवान भी देख रहे हैं। तो यहां साधक की आंतरिक अवस्था को व्यक्त किया गया है, उसे कितना सजग होना चाहिए, कितना सतर्क होना चाहिए। वो कहते हैं कि वो नया आता है तो पहले प्रसाद उसको हेल्प करता है, लेकिन बाद में अगर वो अति भोजन करने लगे तो वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, ये वेग लाइन में आते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक भागते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पाते ये, हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको उस वातावरण में अगर डाल देंगे तो ये आपको खींच के ले जाएंगे। जैसे कई बार हमारे भक्त प्रचार के लिए किसी डिस्को में चले जाते हैं, तो वैसे जल्दी नहीं जाना चाहिए, प्रभुपाद जैसे लोग जा सकते हैं या बहुत ही कोई वरिष्ठ है, बहुत प्रचार कर चुके हैं और सदृढ़ हैं और दया की भावना से जा रहे तो बच जाएंगे, वरना कोई नया भक्त जाएगा तो धीरे धीरे डिक्चिंग वो अपने आप नचता है, देखा आपने, वो हिलता है अपने आप, क्यों, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ये इंद्रिय नहीं है, तो इनको मत छोड़िए, जहां ये वाइब्रेट होते हैं दूर रखिए, कंट्रोल में रखिए, संयम में रखिए, भगवान के सेवा में रखिए, अपने आप कंट्रोल में रहेगा। तो यहां पे वो कहते हैं कि कोई ब्रह्मचारी अगर ऐसे काम करने लगेगा तो धीरे धीरे उसकी चेतना किसमें लगेगी, स्त्री में लग जाएगी, उसे स्त्री आकर्षित लगने लगेगी, वो मोहित हो जाएगा, और फिर क्या होगा आप जानते हैं, प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि बड़े बड़े जो मुस्तंड होते हैं ना, ऐसे खड़े, देखा आपने स्टाइल में खड़े होते हैं, उनको एक लड़की पे ऐसे कर देना, इतना कर दे, ओ इतना बड़ा शरीर देखो एक मिनट में कैसे ऐसे हो गया, उसके सामने बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर करिए तो ऐसा करता है, आओ आओ उसको परास्त करना है ना, बॉडी बिल्डर मत भेजिए, बस एक सुंदर स्त्री और मीठा, ओ, 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 ओ बोले क्या करना है, बोले मेरा थोड़ा बैग उठाना है, हाँ ठीक है ठीक है, सोचो गधे की तरह उसका काम करवा लिया, हाँ असली चोर कौन है आपका, अगर कोई बटवा मारता है तो कितना रुपये निकलता है, 100 रुपये 200 रुपया कितना होगा, 5000 रुपया, और हम उसको थप्पड़ मारते हैं, चोर मार, पाट पाट बहुत मारते हैं उसको, चोरी करता है चोरी करता है, असली चोर तो वो नहीं, वो तो साल में एक बार कहीं मिलता है स्टेशन यहां वहां पत्नी आती है, ए जी सुनिए, आ बोल, बोले मुझे एक कलर टीवी चाहिए था, 25,000 गया। ऐसे महीने में जितना भी आपका सैलरी आ रहा है उसका 25-30% तो चोर कौन है, मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते, मैं पढ़ के आया हूं, मैं इसलिए इंग्लिश भी लेके आया हूं, जहां से पढ़ा कुछ लगे तो दे। तो असली चोर कौन है, जो मीठी छुरी से आपको काट दे, बच्चे और पत्नी को स्वरूप दिया गया है। यहां बद्ध जीवात्मा की बात हो रही है, पुनः याद रखिए, मेरी आपकी बात नहीं हो रही है, स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही, बद्ध जीवात्मा कैसे बद्ध होते जाता है उसकी बात हो रही है। हाँ, और फिर उसमें कहा गया कि कोई वानप्रस्थ बन के आ जाए, हाँ ब्रह्मचारी बनना भी आसान नहीं है, घर से मां बाप से लड़ाई करके, समाज से अपना नाम बदनाम करके, दोस्त लोग दूर कर देते हैं, सब छोड़ के आप ठाकुर जी की सेवा में आए और यहां आके इतना फंस गए तो फायदा क्या। तो साधु को चाहिए कि वो सतर्क रहे और सभी मात्र वो तो परदारेश पांव छू लीजिए, माता जी बोलिए, मैं तो महाराष्ट्र में जाता हूं तो प्रचार में माता जी नहीं बोलता हूं, आई बोल देता हूं, आई बोलने से और एक्स्ट्रा इफेक्ट होते, ओ आई बोलते थोड़ा डोनेशन ज्यादा आता है आई बोल देता हूं, उनको भी अच्छा लगता है। तो ये चीज हमें समझना चाहिए। और अगर उन माताओं का आशीर्वाद मिलेगा तो आपकी भक्ति और आगे जाएगी। और उनमें से एक भी माता का आपने अपमान किया या उनको निम्न स्तर का समझा तो समझ लेना क्षण नहीं लगेगा आपका पतन होने में, पतन होने में समय नहीं लगेगा। तो हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। इसमें वानप्रस्थ का भी बात बताया गया है कि कैसे वानप्रस्थ जो है वो सब बीवी को छोड़ के सब छोड़ के भगवान के भजन के लिए आते हैं, परंतु यहां आने के बाद क्या हो जाता है, अपने पत्नी को छोड़ दिया है लेकिन यहां सेवा में रुचि नहीं लगने के कारण अपने मन को एक है कुरु नंदना, हम गुरु पूजा में गाते हैं ना, आराधना करी मने आशा, हे मेरे मन और कोई आशा मत करो। लेकिन हमारा कपटी मन ऐसा है वो गाते गाते भी देखता है आराधना करी है, ये हमारा कपट है। भगवान पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। तो हम अंदर से क्यों ना हो, हमें प्रामाणिक होना चाहिए, बोले महाप्रभु इतना काम वासना है फिर भी आपने मुझे यहां संभाल के रखा है, कृपया और 30 साल और संभाल लीजिए, तब तक तो ये शरीर जर्जर हो ही जाएगा, बस अंत समय आपका नाम में आने दीजिए, मन में आपका स्मरण होने दीजिए। हमें तो उत्साही होना चाहिए। आप लोगों ने रिले देखा है, रिले भागा दौड़ी होता है ना, तो स्कूल में 400 मीटर का दौड़ होता है तो चार टीम होते हैं और डंडा देते हैं, देखा हमने, वो भागता है 100 मीटर, एक आदमी भागता है उसको डंडा देता है, वो खड़ा होता है, देखा वो कैसे खड़ा होता है, वो ऐसे नहीं खड़ा होता है, वो ऐसा खड़ा होता है, मतलब एक पांव आगे करता है, ऐसा रहता है एकदम कि वो हाथ में डंडा आती भागेगा, ऐसा भागता है उधर वाला दूसरा भी। तो हमें उस रिले के मूड में होना चाहिए कि गुरु परंपरा है, गुरु जी ने ज्ञान देने के लिए अर्जित हम बैठे हैं, ज्ञान लिए और जाके बांटे, ये नहीं कि अब ले लिया डंडा उस तरफ भागे, ट्रैक पे भागना है, परंपरा नहीं छोड़ना है, कोई भी उठाएगी राके आपको कुछ सिखा दे नहीं सीखना है, गुरु की वाणी, प्रभुपाद की वाणी, शिक्षा गुरु की वाणी को लेके चलना है तो हम बच जाएंगे। रिले तो भाग लेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे बात की बात, उस मूड में होना है। बचाई कितना साल है, आजकल का उम्र ही 55-60 है, तब तक तो यहां का नस फट जाता है, कभी यहां का नस फट जाता है, अन्न ही कुछ तो ट्यूमर आ जाता है, पेट में ट्यूमर, यहां ट्यूमर वहां ट्यूमर, 8-8 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है। हो तो नसीबे कि हमारे बैच ने दूध दही खाया, अभी का तो बच्चा पहले से प्लास्टिक का राइस खा रहा है चाइना वाला, तो कैंसर नहीं हो तो क्या होगा। तो समय कम बचा है तो उस समय में काम वासना को क्या समय देना है, उतने समय में तैयार होना है। और 30 साल बाद में भगवान को साक्षात मिलूंगा इस खुशी में ये 30 साल भी भजन में लगा देना है, वो भाव होगा ना तो बच जाएंगे, काल का जो समय कट जाएगा। जो अपनी सेवा में समय नहीं बिताते उनको काल खा जाता है। जैसे कभी कभी हम लोग कोई प्रवचन में बैठते हैं, अब प्रवचन कभी कभी बहुत ही मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है या बर्थडे, तो हम लोग ऐसा लगता है कि घड़ी देखते हैं, अरे एक ही मिनट हुआ, अरे कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे बहुत हो रहा है, तो अरे घड़ी फास्ट भाग रहा है। तो काल जो है आपके उत्साह से कनेक्टेड होता है, तो उत्साह बनाए रखना है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात, कि उत्साह बनाए रखना है, निश्चय बना के रखना है और धैर्य रखना है कि भगवान हमें कृपा करेंगे। तो वानप्रस्थ आता है, फंस जाता है, तो हमें ये सब सतर्क रहना चाहिए। एक भक्त थे, वैसे दो भक्तों की कहानी मैंने सोचा बताऊंगा, आप लोगों ने तिरुमंगई अलवार की कहानी सुनी होगी, सुनिए तिरुमंगई अलवार की कहानी। तिरुमंगई अलवार जिन्होंने मतलब काम वासना को जीतने वाला, वो एक व्यक्ति का मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो हुआ ऐसे कि तिरुमंगई अलवार जो थे उनको वो डाकू जैसे थे, बड़े बाप के बेटे थे लेकिन डाकूगिरी चालू कर दिया था, लूटते थे काटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक सुंदर लड़की ब्राह्मण की बेटी थी, पुजारी श्रीरंगम रंगनाथ जी के, वो फूल तोड़ रही थी भगवान के लिए, उनके पिताजी ब्राह्मण थे, वो फूल तोड़ के पिताजी को देती थी, पिताजी अपना सेवा के लिए लगाते थे, तो फूल तोड़ रही थी सुबह के समय में। वैसे डाकू सुबह उठता नहीं था, पता नहीं उस दिन क्यों उठ गया, उठ के जा रहा था, देखा तो इतनी सुंदर स्त्री, वो देख के उसको रहा नहीं गया, वो जाके बोला देखो ऐसा है कि मुझे मालूम नहीं तुम कौन हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। वो लड़की बोली देखो ऐसा है ना कि शादी से तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, परंतु मैं करूंगी तो वैष्णव से करूंगी। तो बोले ये क्या होता है, अब डाकू है रोज बंदूक से गोली मत तलवार से मारता है काटता है, उसको ये डिवोटी का मालूम नहीं कुछ, तो बोलता है ये क्या होता है वैष्णव। बोले कुछ नहीं, तुम इतना करो एक साल के लिए रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, और एक साल के लिए रोज तुम 1000 भक्तों को तुम्हारे धन से प्रसाद खिलाओ, और जब सब वैष्णव खाएं तो जो वैष्णव खिला रहे हैं उनको बाद में खिला के लास्ट में तुम खाओ। तो उसको इतना प्रेम हो गया रहता है, बोले और क्या करना है बता दो, मतलब एक ही बार एक साल में खत्म कर देंगे सब, इतना किया है तो मेरे पास इतने चेले हैं कि एक सीटी मारूंगा सब काम हो जाएगा, खाना वाना बनाना क्या है, ऐसे बंदूक रखूंगा तब सब, हाँ सब बना देंगे। बोले और तुमको भगवान विष्णु के चरण में जाके दंडवत करना है। तो बोले ठीक है, ये क्या चीज है। वो गया, वो पुजारी बोले इधर आ चल मेरे को ड्यूटी बना। पुजारी बोला यार ये मार देगा। वो जाके हार पहना है, तिलक गंधवन सब लगा दिए, बोले अब तुम ड्यूटी हो गए, बोले बस। आज दूसरे दिन सुबह उसको दिखा रहा था, देखो मैं ड्यूटी हो गया। तो बोले वो सेवा, वो जो बोला है वो करो रोज। विश्व वो पंडित को बुलाया, बोले बोलिए ये बता मेरे को क्या है, पढ़ा था बोलो। हाँ वो भी बोलने लगा। और लड़की के प्रेम में देखिए, उसने जाके सब वैष्णव को खाना खिलाना है, तो पहले लूटने लगा, लूट के खिलाने लगा। तो वैष्णव बोले देखो हम ऐसे लूट माट का पैसे का नहीं खा सकते। बोला ऐसा ऐसा है क्या। तो दान मांगने लगा कि भाई दान दो दान दो। अब उसके डर से लोग दान भी दे रहे थे, ले लो लो भाई, अच्छा है तू दान पे आ गया, तू काटा काटी से दान पे आ गया, मेरा ये हमारा सौभाग्य है, उस माता को हमारा दंडवत प्रणाम जिसने तेरे को सुधार दिया। उसको दे दिया, उसने सारा धन लिया, लोगों को खिलाया, बहुत खिलाया बहुत खिलाया। 8 महीना 9 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, हर वैष्णव को खिलाता। तो बाद में इतना नम्र हो गया कि किसी को अगर पांव में कांटा भी लग जाता तो खुद निकाल के उधर मलम कर देता था। बोले माफ करिए मेरे इस भोजन स्थली पे थोड़ा कांटा था, मैं अगली बार ठीक से सुबह साफ कर दूंगा, सुबह जल्दी उठ के साफ कर दूंगा। आपको समझा, चालू काम से हुआ, अंत कहां पे हुआ, कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हुआ। कैसे, वैष्णव सेवा से। तो हम जब वैष्णव सेवा करते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए मुझे मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहा है, हमको ये समझना चाहिए मैनेजमेंट इस्तेमाल करना करे, मेरी काम वासना का सफाई हो रहा है, मुझे सेवा चाहिए। मैनेजर को तो पैसा दे दे तो 4 नौकर और मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सेवा का मौका चाहिए। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी कि हे वृंदा देवी मुझे क्या करिए, सेवा का अधिकार दीजिए। अधिकार तब आएगा जब आप पहले सेवा करेंगे। तो बाद में देखा तो उसको पैसा कम गिरने लगा, दान में भी उतना पैसा नहीं आ रहा था, और वैष्णव पढ़ने लगे। वैष्णव तो आप जानते ही हैं, फीस्ट डिक्लेयर कर दीजिए। कल वहां ब्रह्मचारी फीस्ट था, 2 बजे फीस्ट था, मैं 2:45 से चक्कर काट रहा हूं। फीस्ट के लिए भक्त लोग कभी भी, तो देखे कि ये गुंडा प्रवर्तित हो गया और सब वैष्णव को बुला रहा है। तो सबको बुलाया और चरण धुता था सबको, चरण धो के बिठाता था, पत्तल धोता खिलाता था, खुद पत्तल साफ करता था, अंत में खाता था। ये देख के सब खुश हो गए, लेकिन उन्हें पैसा कम गिरने लगा। तो उनके चेले बोले गुरुजी ऐसा है ना, पैसा बहुत कम गिर रहा है। बोले क्या करें। बोले आप ऐसा करते हैं, वापस चोरी करना चालू करते हैं, उन लोगों को चुराएंगे जो टैक्स नहीं देते, जो गरीबों को लूटते हैं उनको चुराएंगे, नॉर्मल लोगों को नहीं चुराएंगे। ठीक है बोले। वापस उन्होंने तलवार वलवार निकाला, चोरी करते थे करते थे करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, एक श्रीमंत एकदम सोना होना से सज्जित एक पति पत्नी गृहस्थ आ रहे थे, पूरा बैलगाड़ी 5-6 बैलगाड़ी भर भर के सोना लेके जा रहे थे। तो जब भी सोना वोना लेके जाते तो तलवार वलवार ढाला लेके सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनके साथ कोई नहीं था, कोई नहीं था। तो वो बोले अरे ये तो बहुत ही अच्छा मामला है, 5-5 बैलगाड़ी सोना, ऊपर से ये दोनों निहत्ते, पकड़ो इनको, अटैक कर दिया। अब बैलगाड़ी वैलगाड़ी सब ले गए। और ये बोला ए निकाल निकाल, तो आदमी सब निकाल के दिया। वो औरत को बोला निकालो, तो उसने भी सब निकाल के दिया। लेकिन पांव की जो रिंग है ना, पांव को जो ये होता अंगूठा नीचे का, उसका वो रिंग पहनते हैं कुछ लोग, तो रिंग पहना था सोने का। तो बोले निकालो, बोलते बेटा निकल नहीं रहा है, तुम ही निकाल लो। तो उसको खींच रहा, नहीं निकल रहा है। बोले रुक हिलना मत, और दांत लगाया, दांत से निकालने वाला था। अब दांत जो ही लगाया उतने में डूम करके कौन, लक्ष्मी नारायण स्वयं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान के। स्वयं लक्ष्मी नारायण खड़े हो गए, बोले देखो रे आप। बोले अरे तिरुमंगाई, तेरा ये वैष्णव सेवा का भाव देख के हमें रहा नहीं गया, इसलिए हम इतना ले आए, आ ऊपर से हम भी पहन के आए, आ तू इतना सेवा में रथ है कि मेरा वो भी नहीं छोड़ रहा है। तो बोलते मैं क्या करूं, वैष्णव सेवा के बिना मुझे रहा नहीं गया है। तो बाद में वो बोला नहीं नहीं, तो एकदम दर्शन हो गया तो भगवान वापिस अपना नॉर्मल रूप ले लिए। बोले हम प्रसन्न है, तुम ऐसे कार्य करते रहो। तो बोले वापिस लक्ष्मी जी को बोले माता ऐसा है ना, बुरा मत मानिए, आपने दर्शन तो दे दिया, अब आप जा ही रहे हैं, वो अंगूठी दे दीजिए। तो वैष्णव सेवा में इतना रत हो जाए आदमी, इतना सेवा किया। 2 साल बाद वो लड़की आई और वो उनको मिली, वो भी सोची कि मैं भी भोजन करती हूं, इसको याद है कि नहीं पता नहीं। वो आए देखा, बोलते माता जी
कुछ चाहिए?
वो भूल गया कि इसके वजह से मैं भक्ति में आया, वो ये भूल गया कि इसी को प्रेम करने के पीछे मैं भक्त बन गया। तो काम वासना का तिरस्कार करना, उसके बारे में गलत बोल के कोई फायदा नहीं है। उसका एक ही सोल्यूशन है, क्या है? समझो आपका हाथ में जल गया और वहां खुजली हो रहा है, तो खुजला के कोई फायदा है? कंडू हुए करे और दुख दुख वहां और दुख होगा। वो मजा भी आता है और वो दुख भी होता है। वैसे ये काम वासना है, जितना भोग करेंगे थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा, फिर दुख ही दुख, फिर और भोग करने की इच्छा होगी, फिर और दुख। और आप देखिएगा, मैंने कई बार देखा है जो बैचलर लोग होते हैं ना, बड़ा जोश में रहते हैं, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे हम, ये कर देंगे, और जो ही शादी होता है तो उसको देखिएगा मुंह बंद। मैं जितने भी पतियों को देखता हूं बेचारा, ऐसा लगता है बहुत दया आता है। बोला आप जब कर रहे ना, बोला कर रहे, अब 3 साल आप कैद में, थोड़ा संभाल के रहिए। तो ये हम हमारी चेतना से फंस जाते हैं, हमारे चॉइस से फंस जाते हैं। लेकिन प्रभात बोलते हैं अगर पति पत्नी दोनों भी भक्त बन जाएं तो वो वैकुंठ हो जाएगा, वो भी प्रभात सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि जब तक हम वैष्णव सेवा नहीं करते हैं हमारे मुक्ति का मार्ग नहीं होगा, हमें भगवान की कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होगी। और एक कहानी आती है बिलाव मंगल ठाकुर की, आपने तो ये कहानी पहले भी सुना होगी। बिलाव मंगल ठाकुर बहुत फेमस है हमारे कवि कृष्ण करुणामृत, जिन्होंने लिखा था जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा गोविंद दामोदर माधवेति सुखम शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। वो ऐसे थे कि उनका पहले का नाम सिहरण था, सिहरण। तो वो आप आज भी वो सातारा में जाएंगे तो वहां पे माउली करके एक जगह है, माउली, आप लोग कभी बोलेंगे तो हम लोग लेके चलेंगे फ्री में। सातारा में हमारा नामट सेंटर भी है, प्रचार भी चलता है। तो वहां पे जहां पे चेतन महाप्रभु को कवि करुणामृत, कृष्ण करुणामृत जो किताब है वो मिला था, वहां पे लोकनाथ महाराज का प्लान है कि वहां पे एक चेतन महाप्रभु का वो बनाया जाएगा, तो हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं। तो वहां पे जो ये थे, क्या नाम उनका, ये जो सिहरण था ये बहुत ही धनाढ्य था, मतलब जमींदार बोलते हैं ना, तो जमींदार टाइप का आदमी था, सबसे पैसा लेता था और बहुत कमाता था। लेकिन जितना धन आता है उतना दिमाग उल्टा चलने लगता है, इसलिए कुंती महारानी क्या कहती है, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी यदमान मदापुमान नहीं वारति अभिधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। हे प्रभु कृपा करके मुझे सबसे जन्म ऐश्वर्य, अच्छा जन्म ऐश्वर्य सबसे छोड़िए, नहीं चाहिए इतना धन, सर चकरा जाता है। आप देखिए आपका कोई दोस्त है गरीबी में, अरे यार बुक दे दो, कॉपी दे दो, जो ही उसको नौकरी लगता है लगता है तो गाड़ी दे लो, ठीक है ना, हाँ कुछ चाहिए, कुछ नहीं पूछेगा। कोई अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो कुछ मदद नहीं करता है। तो यहां पे धन आने के कारण अहम आ गया और उन्होंने जाके नाच गाना सुनना चालू किया। तो एक चिंतामणि नाम की वेश्या थी, क्या नाम था, चिंतामणि। वो वेश्याओं को नदियों के उस पार रखा जाता था ताकि वो समाज में गंदगी ना फैलाए और जो पापी लोग हैं वो अपना जो है वो दूर रहें। तो नदी था और नदी बहुत बड़ा था, महाराष्ट्र में जाएंगे वो कृष्णा नदी बोलते हैं, उसका 80 फीट तो किनारे में गहराई है, बीच में तो सोचना ही नहीं, इतना विशाल नदी। और उस साइड में चिंतामणि का अपना जो घर था 2 माले का वो था। तो वहां रोज विदाउट फेल बोट पकड़ के वो जाता था और वेश्या को मिलता था। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये चिंतामणि उसके पिछले जन्म के गुरु थे, सिर्फ उस जीवात्मा को उद्धार करने के लिए आए थे। गुरु किसी स्तर पे जा सकते हैं अपने शिष्य का उद्धार करने के लिए, जैसे कभी बच्चा कीचड़ में गिर जाता है ना तो माँ ये नहीं देखती कि 1000 रुपए का साड़ी है 5000 का साड़ी है, वो कीचड़ में घुस जाती है, ए लाला उठो उठो उठो, वो ये नहीं देखती मुझे कीचड़ लग गया, अपने बच्चे को बचाती है। वैसे गुरु ये नहीं देखते कि मेरा चेला कहां है। कभी कभी लोग बोलते हैं महाराज आपने उसको क्यों मदद किया, वो सबसे घटिया डिवोटी है। महाराज बोलते हैं ठीक है, तुम ठीक हो ना, तो तुम ठीक रहो, इसको मैं देख लूंगा, क्योंकि उसे तभी लेक्चर की जरूरत नहीं, उसे प्रेम की जरूरत है। तो प्रेम देने के बाद वो लगता है कि अरे गुरु महाराज ने मेरे लिए इतना किया, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। तो ये साधक का एक अपना स्तर होता है, कभी कभी गलतियां कर देता है। भगवान की कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, अपिचेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित हो ही सहा। अगर वो भजन कर रहा है और अगर वो बड़ा भी बड़ा पाप कर दे तो भी तुम उसे साधु ही समझो, क्योंकि क्या होने वाला है, बहुत जल्दी मैं उसका क्या करने वाला हूं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत चांदीम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि जो मेरा भक्त है वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, धर्मात्मा हो जाएगा। तुम बीच में मत आओ, आपने लोहे को आग में डाल दिया है तो आगे जाके वो लोहा आग ही होगा, बर्फ होगा क्या? नहीं। तो आप बोलोगे नहीं अभी ठीक से पक नहीं रहा है, निकाल देते हैं, तो बीच में निकाल दोगे तो वापिस लोहा हो जाएगा। इसलिए भक्त को भक्तों के संग से बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही अंदर जो धुलाई करना कर दीजिए। हरे कृष्ण आंदोलन में आने के बाद बहुत धुलाई होता है, शरीर का नहीं मन का। चेतो दर्पण मार्जनम बोलते हैं ना, सर्फ एक्सेल है ना, वैसे यहां पे होली नेम है ना, होली नेम करिए, भक्तों का संग लीजिए, ऐसे ऐसे भक्त मिलेंगे आपकी चेतना अपने आप शुद्ध हो जाएगी। तो यहां पे देखा कि वो जा रहा है, एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पिताजी मर गए, उसके पिताजी चले गए, जैसा भी बारिश हो रहा है ना, उसे जोर जोर से बारिश हो रहा था। तो जनरली जब बहुत बारिश होता है और स्मशान भूमि में भी अग्नि नहीं लग सकती तो उस लाश को लपेट के पानी में डाल दिया जाता है। तो हुआ ऐसे कि इसको बोला गया कि चलो बेटा अपने पिताजी को अंतिम संस्कार के लिए चलो, बोले अभी मैं नहीं आऊंगा, मेरा समय हो गया है। सोचो इतना काम वासना में लुप्त था वो कि वो कह रहा था कि मेरा उधर का समय हो गया, मैं यहां नहीं आऊंगा। चिंतामणि चिंतामणि है, जैसे हम लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, चिंतामणि चिंतामणि गा रहा था। तो बोला अरे मूर्ख रुको, उसको सबने समझाया, बीवी ने समझाया, बच्चों ने समझाया, बड़ों ने समझाया, बूढ़ों ने समझाया, वो नहीं रुका। काम आतुराणाम न भयम न लज्जम, अगर कोई काम का आतुर हो गया तो न उसे भय है न लज्जा। आप लोग भी प्रसाद का घड़ी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। मैं खत्म कर दूंगा, दो मिनट बचा है। तो जो फिर वो गया चिंतामणि चिंतामणि करके, चिंतामणि के पास गया, कैसे गया तो बारिश फुल भर रहा था, नदी इतना बह गया था कि उसमें बोट भी जाने को तैयार नहीं था। वो बोला मैं तुझे मेरा पूरा धन दे दूंगा, मुझे आज के दिन वहां पहुंचा दे। वो बोला आज के दिन आपको पहुंचाऊंगा तो मैं डूबूंगा और आप डूबोगे, तो धन क्या मिलना है, मैं नहीं जा रहा। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने नदी में छलांग मार दी और तैर रहा था तो उसको एक लकड़ी जैसा कुछ मिला, अंधेरा था, वो लकड़ी को अपने पेट पे ले लिया और ऐसे ऐसे कर करके पार कर दिया। पार करके वो लकड़ी को वहां रखा ताकि पार करने में काम आए वापिस। और जब वो देखा कि लाइट बंद है क्योंकि अंधेरा था, वो बारिश गिर रहा था तो अंधेरा था, तो एक रस्सी दिखा, वो पहले माले पे रहते थे, रस्सी खींच के वो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया और बोला चिंतामणि मैं आ गया। चिंतामणि बोली शी, मराठी में बोलते घाणेरडा, गंदा कहीं का। तुकाराम महाराज कहते हैं पापाची वासना नको दाहू डोळा त्याहुनी आंधळा बराच मी। हे भगवान मेरे को इस आंख से पाप देखने के बजाय मेरे को अंधा कर दो, मत रखो ये आंख। मतलब ऐसा नहीं, हमको आंख शुद्ध कर देना है, उनको वो सब आंख मत निकले तो पता चला सर्विंग में प्रॉब्लम होगा, वैष्णव सेवा नहीं कर पाएंगे। तो देखा कि ये जो चिंतामणि देखे, बोले कैसा मूर्ख है। अरे मूर्ख, इतना तू ताकत और चेतना और भाव भगवान को प्राप्त करने में लगाता तो आज तुझे भगवान का दर्शन हो जाता, तो तू कहां इस चमड़ी में, इस मांस में, इस हड्डी को भोग लेने के लिए पहुंच गया, मूर्ख कहीं का, जा यहां से। कि चिंतामणि गुरु थे ना, वो बोलने का अधिकार रखा था, पैसे के लिए थोड़ी आए थे। तो उसको भी लगा यार मैंने तो कभी सोचा नहीं। पहले के लोग बचपन में संस्कार लेते थे, बचपन में से पाठ करते थे करते थे, उसके वजह से थोड़ा चेतना अच्छा रहता था। आज के बच्चे डोरेमोन देखते हैं तो उनको गीता रामायण समझ में नहीं आता है, हम लोग कम से कम बचपन में कृष्ण सीरियल देखते थे कुछ तो समझ में आता था। तो भी बचपन में कुछ संस्कार लिया होगा, ब्राह्मण घर से था, जब देखा कि वहां पे ऐसा हो गया तो वो चला गया, चला गया, बोला अब मैं बस कृष्ण के पीछे जाऊंगा। जब वो उतरा तो सखी को बोली कि देखो तो आया कैसे इतना बारिश में, तो वहां देखा तो रस्सी नहीं था, क्या था, सांप। और नीचे देखा तो लकड़ी नहीं था, उसी के पिताजी का लाश था, अपने बाप के लाश के ऊपर पार करके सांप, मतलब कितना आतुर था। तब वो वापिस गया और भजन करना चालू कर दिया, सब छोड़ दिया उसने। वो बोला नहीं अब कृष्ण ही चाहिए मुझे बस। लेकिन हुआ कैसे, भजन कर दिया, अच्छा साधु बन गया, लेकिन पूर्व जो प्रवृत्ति थी काम वासना की वो कभी कभी उसको सताती थी। ये हर साधक का प्रॉब्लम है, सिर्फ उनका नहीं था, उनका नाम लेके हम नहीं बच सकते। हम सब वो साधक हैं जिनको भगवान के प्रभुपाद बोलते पहला वाक्य में, जिनको भगवान के धाम जाना है और अपनी चेतना को उठाना है, उन्हें यह परीक्षा पार करना होगा। तो 9 बज गया, बस एक मिनट में लूंगा। तो उसके बाद वो जब गए तो रस्ते में एक दिन ऐसा हुआ कि एक सुंदर स्त्री दिखी जो मटके में पानी लेके जा रही थी। उसको उसी चिंतामणि का ही रूप दिखा, तो उसके पीछे भागने लगे अचानक। तो ये लेडी भी भागने लगी अपने पति वाले, बोले मेरे पीछे आदमी लगा है। तो बोले ये तो साधु आदमी है, ये कैसे लग गया पीछे। तो उसको बोला तुम अंदर रहो। तो बोला देखो मैं तुमसे कुछ भिक्षा नहीं मांगूंगा, पर मेरी एक इच्छा है तुम पूरी कर दो। पति डर गया, तो बोला ऐसा है कि मैं तुम्हारे पत्नी के साथ एक बार संभोग करना चाहता हूं। आप सोचिए, साधु दक्षिणा मांगे ठीक है, खाना मांग ले ठीक है, प्रॉपर्टी मांग ले ठीक है, ये क्या मांगने वाली चीज है। इतना नीच गिर गया था वो, वापिस काम वासना में अटक गया। लेकिन भगवान की कृपा, यहां प्रभात कहते हैं कि भगवान अपने भक्त को गिरने के बाद भी वापिस उठाते हैं, यह भगवान की महिमा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो उन्होंने क्या किया, जो ही वो बीवी को बोले देखो ऐसा है, साधु घर में जो मांग ले दे देना चाहिए, तुम सेवा के रूप में चले जाओ। तो सेवा था इसलिए वो सज धज के आई और अपने आप को समर्पण कर दिया। तब तक परमात्मा है ना हृदय में, दूल्हा मंगल ठाकुर का साधना काम में आया। अंदर वो लड़ रहा था ये गलत है, आगे से बोलता है नहीं ये सही है, करो नहीं, इसमें लड़ रहा था। उतने में भगवान ने अंदर से शक्ति दिया, उसने बोला माई तुम्हारे जो साड़ी की दो पिन है वो निकाल के दे देना। अब वो बोले कुछ समझ में नहीं आया, और जो ही पिन लिया बोले ये आंख माध्यम बन चुके हैं, आंख फोड़ दिया निकाल दिया, और बोले अब मुझे कोई समस्या नहीं होगा भजन में। और फिर वो आके जाके इतना भक्ति किए, वृंदावन पहुंच गए। तो जो ही वृंदावन पहुंचे, भूखे थे, कौन आया, छोटा बालक आया मटकी लेके, बोले बूढ़े बाबा भूखे हो क्या। बोले हाँ लाला कुछ है क्या। बोले हाँ ये लो लो छाछ पी लो दूध पी लो। बोले तुम कहां से आए हो। बोलते हम यहीं खेलते रहते हैं, हमारे सखा लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, तो बोले बाबा तुम भजन वजन बोलते कुछ सुनाओ ना। तो फिर वो भजन सुनाने लगे, तो वही कृष्ण करणामृत सुनाने लगे, और वो हाथ पकड़ लिया उस बच्चे का और बोले ए लाला तुम्हें क्या लगा, तुम्हें हाथ लगे मैं पहचान नहीं पाऊंगा। बोले नहीं मुझे छोड़ो, माई बुला रही। बोले नहीं, अगर तुम यहां से भी छूट गए तो यहां से नहीं छूट पाओगे, तुम्हें मैंने मेरे कारागृह में बंद करके रखा है। बोलो कृष्ण भगवान के। तो इस तात्पर्य से हम लोग ये सीखते हैं कि कितना भी कठिनाई हो, कितना भी हमारे अपने अपने समस्याएं हो, हमको हमारा भजन करते रहना चाहिए कि कृष्ण हम पे सोच के एक बार कृपा कर दें। हाँ, एक हमको तो ना अब तो कृपा करो श्री राधा, तो ऐसे एक बार कृपा करेंगे भगवान हम पे अगर हम हमारा साधना सही करेंगे। भगवान गीता में कहते हैं तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। ज्ञान का दीप जला देता हूं जो प्रामाणिकता से भक्ति करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, इंजीनियर हो, अनाड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो, ये सब अहंकार दरवाजे के बाहर छोड़ के मंदिर में आना चाहिए। मैं सिर्फ यहां एक साधक हूं, भगवान का भजन करके जो बचा खुचा क्षण है उनमें मेरा मन और चित्त लगा के मैं नैया पार करना चाहता हूं, ये संसार का भवसागर पार करना चाहता हूं, तो भगवान हमें हमारा संसार पार कर देंगे। तो इससे हम लोग ये सीखते हैं कि पुरंजन की कथा से यहां इस श्लोक में स्पेशली एक साधक की अवस्था को बताया गया है। और साधक को अंत में हमें यह समझना चाहिए कि अपना पथ से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, सतर्क रह रहे कि अगर सतर्कता के बावजूद भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो भी भजन को नहीं छोड़ना चाहिए, पुनः उठना चाहिए। रनिंग रेस में देखा है कभी कभी भागते 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 अचानक कुछ ऐसा होता है वो गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ता, वो छोड़ देगा तो हार गया, वो फिर भी भागता है और उसके बाद उसको पिछला वाला गुस्सा रहता है तो और जोर से भागता है। तो हमको भी साधक को यह सब सीखना चाहिए कि भगवान के पीछे हमको तीव्रता से भागना है। तीव्रेण भक्ति होगी ना यजेत पुरुष परम, भगवान की प्राप्ति तब होगी जब हम तीव्रता से भक्ति करेंगे। कैजुअल भजन करने से भगवान की प्राप्ति होना मुश्किल है, तीव्रता से लगे रहेंगे। धन्यवाद। अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो जो मेरे लेवल से बाहर है या कुछ है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके बेटा समान समझ के, भाई समान समझ के, जो भी समझ के फॉरगिवनेस। ठीक है, हरे कृष्णा, समय हो गया है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद के, श्रीमद भागवतम के, निताय गौर प्रेमानंदे।